ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 28 मार्च 2021 के लिए है। विषय वास्तविकता, स्वर्णपथ, यशाया। क्योंकि प्राचीन अकाल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया है और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बात जोहने वालों के लिए करे। उत्तर दिए ध्यान यशाया। हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तो वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रस्तुति ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सर्जा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमान। मूसा मिद्यान के एक याजक उसके ससुर यत्रु की भेड़ बकरियां चराता था, और वो उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। फिर यहोवा ने कहा, आ मैं तुझे फ़राउन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। निर्गमान। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वो मेरी प्रतीति न करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तब वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। वो लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितारों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया। फिर जब उसने निकाला, क्या देखा कि उसका हाथ कूड़ के कारण बर्फ के समान सफ़ेद हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर फिर से ढांप। और उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या दिखता है कि वो फिर सारे देह के समान हो गया है। राजा। आराम का राजा इसराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि उम्मक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इसराइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और उम्मक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इसराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की, और उस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम में से कौन इसराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। अलीशा जो इसराइल में भविष्य अद्विकता है, वो इसराइल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू शियन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊँगा। और उसको ये समाचार मिला कि वो दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का तहलवा उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके एक सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आँखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आँखें खोल दी और जब वो देख सका तो क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मरकस। यीशु ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया। मरकस। और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरू से निकली थी तो तमाई का पुत्र बरतमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढारस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मत्ती। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। करंथियों। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हिया नहीं छोड़ते, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्याग्य नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। इसलिए हम हिया नहीं छोड़ते। यदि आप ही हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतर मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वास्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वास्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वास्तुएं सदा बनी रहती हैं। इफ़सियों। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ केसहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है। शुरू से अनंत तक जो भी नश्वर है वो भावतिक मानव विश्वासों से बना है और कुछ और नहीं, केवल वही वास्तविक है जो ईश्वर को दर्शाता है। भावतिक समझ के विश्वास और सपने से पूरी तरह से अलग आध्यात्मिक समझ और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य एक प्रभुत्व की चेतना को प्रकट करके जीवन दिव्य है। ये समझ त्रुटि निकालती है और बीमारों को ठीक करती है, और इसके साथ आप अधिकारी के नियम बोल सकते हैं। इब्रानी शरीयत देने वाला भाषण की धीमी गुट्टी लोगों को यह समझने में निराश करता है जो उसे बताया गया था। जब अपने डंडे को गिराने के लिए प्राज्ञा ने नेतृत्व किया तो उसने देखा कि यह सांप बन गई, तो उसके आगे मूसा भाग निकला, लेकिन ज्ञान ने उसे वापस आकर सांप को पकड़ने के लिए मजबूर किया और तब मूसा का भय दूर हो गया। इस घटान में विज्ञान की वास्तविकता देखी गई थी। पदार्थ को केवल एक विश्वास के रूप में दिखाया गया था। ज्ञान की बात के मुताबिक सांप दुष्ट दिव्य विज्ञान को समझने के माध्यम से नष्ट हो गया था, और ये सबूत एक कर्मचारी बना जिसके आगे झुकना था। मूसा के भरम ने उसे खतरे में डालने वाली अपनी शक्ति खो दी जब उसने पाया कि जो कुछ उसने देखा था वो स्पष्ट रूप से वास्तव में था, लेकिन ये नश्वर विश्वास का एक शरण था। ये वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया गया था कि कुछ रोग नश्वर मन का निर्माण था और ना ही पदार्थ की स्थिति। जब मूसा ने पहली बार अपनी छाती पर हाथ रखा और वो भयानक बीमारी के साथ सफ़ेद हो गया, और वर्तमान में एक ही सरल प्रक्रिया द्वारा अपनी प्राकृतिक स्थिति के लिए अपने हाथ को बहाल कर लिया। ईश्वरी विज्ञान में इस प्रमाण से ईश्वर ने मूसा का भय कम कर दिया था, और उसके भीतर की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ बन गई जिसने कहा, यदि वो तेरी बात की प्रतीति ना करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे, और इसलिए ये आने वाली शताब्दियों में से था। जब यीशु द्वारा विज्ञान का प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसने अपने छात्रों को पानी को मैं में बदलते हुए मन की शक्ति को दिखाया और उनको सिखाया कि कैसे सांपों को संभाला जाए, बीमारों को ठीक किया जाए और दुष्ट आत्मा को निकाला जाए मन की सर्वोच्चता के प्रमाण में। जब एक सामग्री से आध्यात्मिक आधार पर जीवन और बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण को बदलता है तो हम जीवन की वास्तविकता प्राप्त करेंगे। आत्मा का नियंत्रण और अपने ईश्वरी सिद्धांत में मसीही धर्म या सत्य का अनुभव करेंगे। ये सामान जैसा पूर्ण और अमर आदमी प्राप्त होने से पहले चिरमोत्कृष होना चाहिए तो उसकी क्षमताओं को पता चलता है। ये अत्याधिक महत्वपूर्ण है। दिव्य विज्ञान की इस मनियाता के आने से पहले पूरा होने वाले अपार कार्य के मद्देनज़र अपने विचारों को दिव्य सिद्धांत की ओर मोड़ने के लिए ये पारिमित विश्वास की अपनी त्रुटि को त्यागने के लिए तैयार हो सकता है। आलोचकों को विचार करना चाहिए कि तथाकथित नश्वर मनुष्य की वास्तविकता नहीं है, तब वो मसीह के आने के संकेत को निहारते हैं। मसीह भगवान के आध्यात्मिक या सच्चे विचार के रूप में अब पुराने के रूप में आता है। गरीबों को सुसमाचार प्रचार करना, बीमारों को ठीक करना और बुराइयों को बाहर निकालना, क्या ये त्रुटि है जो मसीह धर्म के आवश्यक तत्व को बहाल कर रही है, अर्थात अपोस्टलिक दिव्य उपचार को? नहीं, ये मसीही धर्म का विज्ञान है जो इसे बहाल कर रहा है, और अंधेरे में चमकने वाला प्रकाश है जो कि अंधेरे को समझ में नहीं आता है। भावतिक शरीर और मन लौकिक हैं, लेकिन वास्तविक मनुष्य आध्यात्मिक और शाश्वत है। असली आदमी की पहचान नहीं खोई है, लेकिन इस स्पष्टीकरण के माध्यम से पाया जाता है। इसके लिए अस्तित्व और सभी पहचान के प्रति सुचेत विभाजित है और अपरिवर्तित रहता है। जब भगवान सब और अनंत काल के हैं, तब ये असंभव है कि मनुष्य को वास्तविक रूप से खोना चाहिए। ये धारणा के मन पदार्थ में है, और तथाकथित सुख और पीड़ा, जन्म पाप बीमारी और पदार्थ की मृत्यु वास्तविक हैं, एक नश्वर विश्वास है, और ये विश्वास वो सब है जो कभी खो जाएगा। मनुष्य की अपनी परिभाषा को जारी रखते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि सामान जैसे पूर्ण और अमर आदमी हमेशा के लिए अस्तित्व में है, और किसी भी जीवन पदार्थ और बुद्धि के नश्वर भ्रम से परे और हमेशा मौजूद है। ये कठान तथ्य पर आधारित है, काल्पनिक नहीं। नश्वर मन से पहले मॉडल क्या है? क्या ये अपूर्णता, आनंद, दुख, पाप, पीड़ा है? क्या आपने नश्वर मॉडल को स्वीकार किया है? क्या आप उसे पुनः पेश कर रहे हैं? तब आप शात्र मूर्तिकारों और ग्रंथ रूपों द्वारा अपने काम में परिधोतित होते हैं। क्या आप अपूर्ण मॉडल के सभी मानव जाति से नहीं सुनते हैं? दुनिया इसे लगातार अपनी टिकटिकी से पहले पकड़े हुए है। परिणाम यही है कि आप उन निचले पीड़न का पालन करने के लिए उत्तरदायी हैं, अपने जीवन अकाल को सीमित करते हैं और अपने अनुभव को नए रूप रेखा और पदार्थ के मॉडल की विकृति में अपनाते हैं। इसे ठीक करने के लिए हमें पहले अपनी टिकटिकी को सही दिशा में मोड़ना होगा और फिर उस रास्ते पर चलना होगा। हमें विचार में आदर्श मॉडल बनना चाहिए और उन्हें लगातार देखना चाहिए, या हम इन्हें भव्य और महान जीवन में कभी नहीं चुनेंगे। निहेश्वरथाता अच्छाई, दया, न्याय, स्वस्थ, पवित्रता, प्रेम, स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर राज करे, और पाप, मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाएगी जब तक वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। सभी वास्तविक शाश्वत हैं। पूर्णता वास्तविकता को रेखानंद कराती है। पूर्णता के बिना कुछ भी पूर्ण वास्तविक नहीं है। सभी चीज़ें गायब होती रहेंगी जब तक पूर्णता प्रकट ना हो जाए, वास्तविकता सामने ना आ जाए। हमें सभी जगहों पर भूतों के बारे में विचार छोड़ने चाहिए। हमें अंधविश्वास के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इसमें सभी विश्वास पैदा करना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं, पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। यदि मनुष्य एक बार परिपूर्ण था लेकिन अब अपनी पूर्णता खो चुका है, तो मनुष्यों ने ईश्वर की परिवर्तित छवि को कभी नहीं माना। खोई हुई छवि कोई छवि नहीं है। सच्ची समानता दिव्य प्रतिबिंब में खो नहीं सकती। इसे समझते हुए यीशु ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अपने आदर्श के विपरीत अपने आदर्शों को अपने विचारों में उपस्थित होने दें। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।